उपकार है उसके लिए। जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। बोलिए द्वादशांग मई जिन वाणी मातनो जय।
नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनी धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते दीशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णं संसारि दुःखतः सत्त्वान् योधरत्तुत्तमे सुखे सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदो यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति।
समाधि मरण या संलेखना मृत्यु महोत्सव इसकी चर्चा है। पेज नंबर है इसमें 435, 125 नंबर का श्लोक।
आलोच्य सर्वमेनः कृतिकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोप्येन महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम्।
यदि आपने कोई पाप अपराध किया हो, अन्य से कराया हो, करने वालों को अच्छा जाना हो, तो उस अपराध को एकांत में कपट रहित होकर निर्दोष वीतरागी ज्ञानी गुरु से आलोचना करें तथा मरण पर्यंत पूर्ण महाव्रतों का आरोपण करें, ग्रहण करें। वीतरागी निर्दोष गुरुओं का संयोग प्राप्त हो जाए, अपनी रागादि कसाएं घट जाएं, परिसय आदि सेने में अपने शरीर व मन समर्थ हो, धैर्य आदि गुणों का धारक हो, निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु निर्वाह करने को समर्थ हो, देश काल सहायक का शुद्ध संयोग प्राप्त हो जाए तो महाव्रतादि भी अंगीकार करे। यदि युक्त बाह्य अंतरंग सामग्री प्राप्त नहीं हो तो अपने परिणामों में ही भगवान पंच परमेष्ठी का ध्यान करके अरहंत आदि से ही आलोचना करे। अपनी योग्यता समस्त पांच पापों का त्याग करके ग्रह में रहता हुआ ही महावृति के समान होकर रोगादि की वेदना को कायरता रहित बड़े धैर्य पूर्वक सहता हुआ दुख रूपी वेदना को बाहर प्रकट किए बिना ही सही कर्म के उदय को अपने स्वभाव से भिन्न जानकर समस्त शत्रु मित्र संयोग वियोग इन सब में साम भाव धारण करते हुए परिग्रह आदि की उपाधि को त्याग कर विकल्प रहित हो जाए। आखिरी विदाई समारोह है। देखो सभी लोग सुमरण चाहते, कोई कुमरण नहीं चाहता, परंतु किसी से कहें कि कुमरण किस कारण से होता है, उन कारणों का त्याग करो, तो तैयार नहीं। और सुमरण सब चाहते कि अच्छी तरह से शांति से देह छूट है। तो आचार्य जी कहते हल्के होके जाओ, कसाय लेके नहीं जाओ, क्योंकि ये जीव को आप जैसा चेहरा करोगे कैमरे में वैसी फोटो आएगी, दर्पण में वैसी चेहरा दिखे, मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीत अंगार सी। यानी आपने यदि टेढ़े चेहरे बनाए हैं तो फोटो भी टेढ़ी आ जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि यदि कोई भूल से अपराध हुए हो, जानबूझ के अपराध हुए हो, किसी को सताया हो, कठोर वचन बोले हो, परिणाम विचित्र है ना, तो वो कहते हैं कि इन सब प्रसंगों से आप हल्के हो जाओ, यानी उससे क्षमा मांगो, कह लो कि भाई साहब क्या हो गया, मेरा दिमाग ठीक नहीं था, मुझे क्यों आ गया ऐसा रूप। इस तरह से जीव विदाई करते समय कसाय से रहित होकर के गमन करेगा तो उसकी गति अच्छी होगी, और कसाय लेकर के जाएगा तो चूहे बिल्ली जैसे दूसरे भाव में फिर जन्म हो, फिर न्योला और सर्प बनेगा, सर्प बनेगा। और अपन ने प्रथमान युग पढ़े हैं तो सब कथाएं अपन को जानकारी में कि रावण और लक्ष्मण कितने भाव हो गए, पार नहीं। मारीच ने यदि पिता के बचनों का अनादर किया तो देखो कितना लंबा काल हो गया, एक कूड़ा कूड़ी सागर, 100,00,000,000,000,000 सागर मारीच को महावीर बनने में लग गए। तो क्या कर रहा है, जो अपनी नहीं है उसे अपना नहीं मानो, और जो अपना है उसे अपना मानो, कोई ईमानदारी सिखा रहा है। एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है तो अपना नहीं मानो, और आत्मा पूरा अपना है तो अपना पूरा मानो। जहाँ देह अपनी नहीं तो अपनी नहीं मानो, जहाँ आत्मा अपने ही तो है और किसका है, तो उसे अपना मानो। आनंद से देह छोड़ोगे, सम्य ज्ञानी की आनंद आता है सम्य ज्ञान का, तो देह छोड़ते समय उसके देह योग को मृत्यु महोत्सव कहते हैं। और जो जीव सम्य ज्ञान नहीं धारण करता यानी सच्चाई नहीं जानता, उसे दुख होता है तो उसका मरण कहलाता, समाधि मरण नाम नहीं पाता। एक गुरुदेव के कुछ ऐसे उद्गार पत्रिकाओं में आए कि आपको सुनकर के लगेगा कि कैसा संसार, एकदम धक्का लगे, अरे जी तूने इस संसार में अज्ञानपने परिभ्रमण करते हुए पूर्व की माता को स्त्री रूप में अनंत बार भोग आया, जो अपनी पत्नी बनती है वो माँ बन जाती है, जो माँ बनती है वो पत्नी बन जाती है, कैसा संसार। यदि अपन को अभी कोई अवधियानी मुनि बता दे कि ये जो अभी आपकी पत्नी है, ये बहन थी, ये बुआ जी थी, ये माँ है, तो आपको कैसा लगेगा। प्रथमचरित पढ़ा हो तो वो किसान अपनी ही पत्नी का पुत्र बना, और इतनी शर्म आई उसे जाति स्मरण होने पर कि वो दूध भी नहीं पीता था अपनी पत्नी का, इतनी शर्म लगती थी, और वो बोलना बंद कर दिया कि हम कैसे बोल रहे, ये तो मेरी पत्नी है, मेरी माँ माँ कैसे कहूँ। और फिर उसी नगर में दिगंबर मुनि राज आए और दो व्यक्ति उनसे बहस करने आए, उन्होंने कहा कि बेटा तुम बहस ऐस नहीं करो, तुम कहाँ से आए, क्या आप इन बातों में नहीं पढ़ो, हमसे शास्त्रार्थ करो। अरे कहाँ से आए, कार थे सालीग्राम से, नहीं ये तो हमें भी मालूम कि तुम सालीग्राम से आए हो, पर ये कह रहे कि तुम आए कहाँ से हो, कि तुम्हें पता है तुम निबोध से आए हो, कैसे भटक रहे, इसके पहले सियार की पर्याय में थे, और दोनों एक हफ्ते तक जब खूब घनघोर बारिश हुई तो भूखे तड़फे और कैसे भी करके नदी पार करके जाना चाहते थे तो पेट में कुछ चुभा या कुछ लकड़ी अकड़ी ऐसी खाई तो इतना सूल दर्द हुआ पेट में कि दोनों के मरण हुए और दोनों के अभी चमड़े इस घर में सूखने डले। जाके देखिया अवधियानी मुनिराज ने बताया तब उनका मद उतरा और फिर बताया कि यहाँ बैठा है अभी ये व्यक्ति बोलता है परंतु इसे शर्म लगती है ये अपनी ही पत्नी का पुत्र। अभी समझ में नहीं आता संसार किसका नाम किस मिजाज में जी रहे हैं अपन क्या चाहते क्या। ऐसा जनवाणी अपन से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो जैसे आप स्वर्ग चाहते तो कब नहीं गए हो नरक में कौन सी जगह है जहां जन्म नहीं लिया एक एक प्रदेश पर और अनंतों बार और कैसे काल बीता होगा यहाँ तो एक दिन की भूख नहीं सहन होती कभी एक आध बार देखो ये समाधि मरण तो बहुत ऊंची बात कभी एक बार सिर दर्द हो पेट दर्द हो उस दिन ओंकार मंत्र पढ़ के समता लाना कितनी आती है तुम्हें ये तो आखिरी समय का महोत्सव उस समय कोई दवाई नहीं चाहिए उस समय किसी का सहयोग नहीं चाहिए उस समय किसी से कसाई नहीं करना सबसे हाथ जोड़ना क्षमा मांगना ऐसा विशुद्धि का काल है वो आखिरी समय। परंतु अभी कभी ऐसी अपनी परीक्षा करो कि सिर में दर्द हो जाए पेट में दर्द हो जाए भूख लगे और परिणाम न बिगड़े रमोकार मंत्र लो पढ़ो आप जरा कितनी देर लगता। तो गुरुदेव कहते हैं कि इस जीव ने अज्ञानता से परिभ्रमण करते हुए पूर्व की माता को स्त्री रूप में अनंत बार भोगा है यानी सारे नव युगों का रस मर जाए। यदि ये लाइनें सुन पढ़ते नहीं आज के बच्चों को फुर्सत नहीं जनवाणी पढ़ने। तूने स्वर्ग नरक चीटी कुत्ता आदि के भी अनंत भव किए उनमें जो एक भव में तेरी माता थी वही दूसरे भव में तेरी स्त्री हो गई और एक भव में जो तेरी स्त्री थी वही दूसरे भव में तेरी माता हुई एक भव में जो तेरा बंधु था वही दूसरे भव में तेरा शत्रु हो गया। कभी कभी जो समाधि मरण में इसमें कहानियों को कथाएं आती है चिल्लाती पुत्र की सुकौशल सुकमाल गजकुमार सबके नाम आए तो एक इसमें अभय घोष मुनि की कथा है। तो अभय घोष मुनि की कथा में आया कि अभय घोष थे काकन्नी नगर में और उनको छत्री थे हाथ में तलवार लिए घूम रहे थे पत्नी के साथ थे और एक किसान अपने कंधे पर एक लकड़ी में एक कछुआ फंसाए लाया बड़ा और चारों पैर बंधे थे उसके उसने कैसा चंचल मन हुआ कि तलवार निकाली और उसके चारों पैर काट दिए। अब वो तड़पता हुआ मरा ये तो प्राण निकल गए आयु का अभाव हुआ पर तत्काल उसकी पत्नी के गर्भ में आ गया उसी की पत्नी के और चंड प्रद्योत नाम रखा उसको बहुत उत्सव मनाया 9 महीने के बाद हे कौन वो खुद ही ने जिसके पैर हाथ काटे और आज क्या कर रहा है उसके ऐसा उत्सव मना रहा हजारों लाखों लोगों को खिला रहा पिला रहा बहुत उत्सव यानी पता ही नहीं है कि हम किस काल जलसा मनाते हैं ये है कौन और क्या करेगा हमारे साथ। और कालांतर में उसे वैराग आ गया और उसने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद बहुत नगरों में परिभ्रमण करते करते उसी नगर में काकन्नी नगरी से गुजरता हुआ बाहर शिला पर बैठे थे। अब उनका ही लड़का चंड प्रद्योत वहीं से निकला और उसने देखे कि ये तो दिगंबर मुनि है परंतु उसे दिगंबर मुनि के साथ पिता है ये भी दिखे और शत्रु है ये भी दिखे दोनों दिखे उसे क्योंकि उसे प्रत्यक्ष में तो पिता है परंतु पूर्वों का स्मरण हो गया उसे कि इनने तुम्हारे प्राण लिए तो अब क्या करना चाहिए पिता है तो छोड़ दें। इतनी तीव्र कसाई आई कि ऐसी हम तड़प तड़प के मरेंगे हम भी इनको मारे। अब देखो मुनि दशा में बैठे और कोई परिणाम भीग नहीं रहा और उन्हें क्या लड़का हो के स्वामी जी ने लिखा है संसार का स्वरूप हम किस ख्वाब में जीते कहाँ रहते हैं और इसके बाद आंख बंद होने पर कहाँ चले जाएंगे।
भवन में जीवर घूमे चुका कण कण को जी भर भर देखा मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा मुझको न मिली सुख की रेखा।
गरीब आदमी तो बेचारा दुखी है परंतु बड़ा आदमी तो सुखी होगा ना बाबू कहते अज्ञानता होगी आत्मा नहीं जानेगा तो कोई सुखी नहीं होगा चाहे देव पर्याय हो चाहे त्रियंश पर्याय हो नाप संयोग से नहीं है। कसाय का अभाव है तो शांति है कसाय का सद्भाव है तो अशांति। अनंत भाव किए जो बंधु था अब आज वो शत्रु बन के आया है अहो धिक्कार है ऐसे संसार को ऐसे संसार में अब हमें स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। ये संकल्प तो लें हमें कि अब हम ना किसी को जन्म देंगे ना जन्म लेंगे ना किसी के जन्मदिन में जाएंगे और ना किसी के मरण की हमें प्रतीक्षा करना पड़े कि हमने जन्म मनाया तो मरण भी तो होगा इसका। ऐसा नहीं है कि जन्मदिन मनाओ मरण दिन हम नहीं आएंगे। बहुत विकट संसार है और एक कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं बाबू जी सबके ऊपर भीतरा और अपन तो बहुत छोटी सी आयु लेके आए अभी तो अपन प्रत्यक्ष में देखते वो चला गया वो चला गया वो चला गया खेल सा है माना पेपर उठाओ तो विदेशी के पेपरों में लिखा रहता है कि आज उन मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ आज उनको अवध ज्ञान हुआ आज उनने दीक्षा ली। विदेशी में कौन सी खबरें आती है सुबह से शाम तक आनंद के महोत्सव और अपने इंडिया में क्या होता कार और बाइक भिड़ गई और वो इस पार्ट पे खत्म। माँ ने बेटी को मार दिया शराब के पैसे मांग रहा था लड़का किस संसार है। गुरुदेव चित्रण करते हैं वो धिक्कार है ऐसे संसार को संसार अब हमें स्वप्न में भी नहीं चाहिए। ऐसे कल्पना करके बैठते ना भैया कि अपनी अब शादी होगी अब अपना धंधा जमाएंगे और अब अपन भी सुख से रहेंगे कि पहले ही पढ़ लो तू किसके लिए कमा रहे। सात भाई थे और एक उनकी पत्नी का नाम था मंगी मंगी नाम था और सास उसे बिल्कुल नहीं चाहती और उसने किसी तरह से जहर दे के और सर्प से कटवा के और ऐसा सोचा कि ये तो मर गई है वह इस मशान में छोड़ दिया। और लड़का आया शाम को मंगी कहाँ गई कि बेटा वो सर्प ने काटा था जहर चढ़ गया था तो उसे इस मशान में फेंक। अब उसे बहुत तीव्र राग था तो उसने लिया कंधे पर और वो दिगंबर मुनिराजों की खोज में जंगल में गया कि रिद्धिदारी होते हैं इनकी हवा भी लग जाती है तो जहर उतर जाता तो गया खोजता हुआ और उसने मुनिराज के चरणों के पास रखा और वो जहर उतर गया। उसे इतनी खुशी हुई कि सवेरे इनकी चरणों की पूजा करेंगे कमल लाएंगे बढ़िया ऐसे भाव आए। अब एक व्यक्ति जो सात लड़के थे जो चोर थे साथ में भाई बहुत सुंदर था उसको छोड़ करके स्मशान की जगह में जंगल में छह भाई चोरी करने गए थे और लाखों रुपए कमा के चुरा के लाए और सातवां भाई इसका नाटक देख रहा था कि ये व्यक्ति तो इसे बहुत पसंद कर रहा है इसके उठा के लाया मुनिराजों की शरण दिलाई इसका जहर उतर गया अब पूजा की व्यवस्था कर रहा है पर ये पत्नी उसे कितना चाहती ये टेस्ट करना। तो वो व्यक्ति इतना सुंदर था कामदेव जैसा तो उसके सामने बार बार आए तो जैसे उसे देखा तो वो ऐसी मुग्ध हो गई कि बोले कि आप हमें अपनी पत्नी बना लो। तो उनके अरे आपका तो पति हमें कुछ काम करने आप हमें पत्नी बना तो उसका क्या होगा वो तो अभी आएगा कि हम उसे मार डालें किस संसार है अपने पति को मार डालेगी जो जो जिसने इसकी जान बचाई जिस जो अभी व्यवस्था कर रहा है उसको मार डालेगी कैसा काम आसक्त पड़ना। तो अब उसे देखा उसने कि कैसे मारोगी कि ये जैसे झुकेगा हम इसे तलवार चला देंगे मुनिराज तो समता के धनी है वो तो कुछ बोलेंगे नहीं और इसे पता भी नहीं चलेगा किसने मारा। तो जैसे ही सचमुच में वो झुका और ये महल व्यक्ति देख रहा था, वो झुके और ये व्यक्ति देख रहा था, इसने तलवार पकड़ के भाग किया और छह भाई जो कमाई करके लाए और बैठे के भैया अपन सब बांट ले कि आप लोग कमाई बांटो, हम तो जिनेश्वरी दीक्षा धारण करें। हमने देख लिया किसके लिए कमा रहे, पत्नी पुत्र के लिए, अभी हम देख के आए पत्नी का नाटक। कौन किसको चाहता है, जहां जिसके स्वार्थ की पूर्ति होती है वहां ऐसा लगता है कि हमें चाहता है, वो अपना पुण्य का उदय हो, उसका कोई स्वार्थ सदरा हो। दो कथानक सुनाए आपको, जो अभी अभय घोष मुनिराज उनके हाथ पैर काट डाले उस चंद्र पर दूत और वो मोक्ष चले गए और खुद के पिता को भी पिता नहीं देख रहा, इनने मेरे प्राण लिए थे। जैसे जीव ने जिस तरह से जीवन जिया उसके ऊपर वैसे बीतता। अपन को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ जगत ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा, ये तो अपन ने भगवान की वाणी पढ़ ली ना कि ऐसा बंद बांधा था उसका वैसा उदय आया, इसलिए किसी की शिकायत अब तुम भगवान से करोगे भगवान सुनेंगे नहीं, जो हो रहा बहुत ईमानदारी से हो रहा, बिल्कुल भी अटपटा नहीं हो रहा, नौना नहीं हो रहा, बहुत व्यवस्थित हो रहा। यदि आदिनाथ को आर नहीं मिले हैं तो अंतराय उनने बांधा था, ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती कोई रोक रहा हो। भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि थे, बाहुबली छायक सम्यक दृष्टि थे, नंदा सुनंदा और आदि सब परिवार पूरा मोक्ष मार्गी था, तो फिर ऐसा हार नहीं दे सकते थे कि अयोध्या 7 महीने 9 दिन 13 दिन रोज आके जाना कैसा लगता अपन को, परंतु उनके अंतराय को कौन टाले, उन्हें तो वो बांधा है ना जीव। बहुत ईमानदारी से विश्व में आप किसी परद्रव्य की शिकायत कर ही नहीं सकते भगवान के शासन। वो कहते हम दूसरे की शिकायत नहीं सुने, तुम्हारी सुन लेंगे, कौन सी, मुझे कसाय आती है इसका अभाव कैसे, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है ये नहीं सुनेंगे, पर तुम्हारा परिणाम बिगड़ता है इसका इलाज हमें कि तुम भेद विज्ञान करो, इनके कारण से दुखी नहीं हो तुम, अपने अज्ञान से व्यामोह से दुखी। कैसे निर्मल शासन है, किसी को दोष नहीं लगाता तब इतनी भद्रता की भूमिका में सम्यकता था। अब यदि इसको इतने मोटे मोटे मिथ्यात बैठे हो कि इनसे हम बहुत परेशान हैं, इनने हमें दुखी किया, समय दर्शन तो बहुत दूर है, ये विशुद्धि लब्धि में इतनी कसायमंद हो जाती बाबू जी, उसे दूसरे के दोष नहीं दिखते, अपने ही दिखते कि हमारा संसार कैसे छूटे, हमारी गलतियां कैसे दूर। इस संसार भाव को धिक्कार हो जिसमें जिसके गर्भ में सवा नौ माह रहकर माता रूप में स्वीकार किया हो और उसे ही दूसरे भाव में स्त्री रूप में भोगना चाहता, जिसने हरिवंश प्राण पढ़ा हो उसे पता है कि कीचक विराट राजा का साला और द्रौपदी उनके यहाँ मालिन मन के चोटी का इंतजाम करती थी, फूल गहती थी जैसे काम करने निकली थी वनवास के समय, और इस विराट राजा की साली कीचक ने देखा कि तो बहुत सुंदर स्त्री है इसे अपनी पत्नी बनाना चाहिए, और उसने जैसे आंखें टेढ़ी आड़ी की तो उसने कहा अर्जुन से कि मैं उस घर में नौकरी नहीं जाऊंगी, एक खोटा व्यक्ति आया, तो बोले नहीं नहीं आप जाओ और उससे कहना कि अपन यहां मिलेंगे, और उससे वादा किया और ये भीम स्त्री की धोती पहन करके गया उस क्षेत्र और इतनी मार मारी इतनी पिटाई पड़ी कि उसे सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा लिखा उस शास्त्र में। इतनी पिटाई पड़ने पर सम्यक दर्शन कैसे हो गया कि उस समय उसे तत्व विचार आया कि मैंने किसी भी परिस्त्री के प्रति आंख क्यों उठाई, मैं तो छत्री गणाने का हूं कुलवान हूं, मेरे प्रणाम क्यों बिगड़े। तो उसने दीक्षा ली, परंतु उसने पता लगाया मुनिराज से पूछा कि हमारा परिणाम उसके प्रति खराब क्यों हुआ, तो मुनिराज ने बोला कि ये तेरी पूर्व भव की माँ है और आज इस माँ के प्रति तुझे वो राग बदल के इस रूप में आया, पहले माँ के रूप में जो राग आता था अब वो राग भोगने के रूप में आया। ये नक्शा बता रहे स्वामी कि जिस पत्नी से तुमने पत्नी बने का व्यवहार किया, वही तुम्हारी माँ बन जाती है और वही तुम्हारी स्त्री, उसे ही दूसरे भाव में स्त्री रूप में भोगना होता है। अरे ये संसार अनंत काल आत्मान के बिना इस संसार में परिभ्रमण किया है, अब हम फिर से संसार में अवतरित नहीं हो, कम से कम ये मन तो बनाओ आपके यहां में अब जन्म नहीं लेना। प्रगति में भावना का फल आता है, माता जी के शब्दों में आता है कि यदि भावना का फल ना आए तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए। हमेशा ये भावना भाव, कब संसार छूटे, कब विरक्ति आए, कब हम अपने काम में लगे, यहाँ किसी से बात करने लायक नहीं, ये तो परदेश में आ गए, कुंद कुंद देव का मन नहीं लगा इस जगत में आ गए, और भगवान की याद आई, कहाँ प्रभु सर्वज्ञ के विरह वाले काल में आ गए, यहाँ तो कोई नहीं दिखता था। तो भगवान की भावना भाई तो देव उठा के ले गए विदेशी, तो भावना भाव के हमें संसार नहीं चाहिए। अनंत काल आत्मान के बिना इस संसार में परिभ्रमण करते हुए हो गए, अब हम फिर से इस संसार में अवतरित नहीं होंगे, हम आत्मा के भान से तो अवतरित हुए ही हैं और अब इसी भव में मोक्ष पाने वाले हैं। अब फिर से इस संसार में नई देह धारण करने वाले नहीं, ऐसा गुरुदेव का देव हिम्मत का आखिरी वचन कि अब ऐसा समझना कि मेरा ये अंतिम भाव है, अंतिम भाव यानी एक दो भाव में चार भाव में इस संसार से हमें विदा लेना। तो मन मनाओगे तो नियम से प्रकृति आपकी साथ देगी, और स्वामी जी ऐसा कहते थे कि भव भव का तो प्रश्न करना ही नहीं, जिसके हाथ में समय सार आया, जिसको इतनी अच्छी जिन मुद्रा अच्छी लगी, उसके ज्यादा भाव होते ही नहीं। ये पहले मन मनाना कि हमारी कुछ अच्छी होनार है, तब ये बातें अच्छी लगती, नहीं तो कौन आए बाबूजी घर छोड़ कर ये रात में सोने और अपनी शांति भंग कर कि सब आराम चाहते, परंतु ये शांति है कहाँ जहाँ अपन शांति माने। शांति तो ये कि हकीकत तो जानो कि जहाँ दे अपनी नहीं, जहाँ परिणाम राग अपना नहीं, संसार में कोई अपना नहीं, एगो में सास दो अप्पा लाण दंसन लक्षण, एक मेरा शाश्वत आत्मा भर है, सब संयोग लक्षणा, सब संयोगी चीज, और जो संयोग है उसका वियोग होना। तो अभी चर्चा अपन ने पढ़ी आखिरी वाली है इस संलेखना की, कि आप थोड़ी हल्के होना, अभी विदाई हो रही ना अपनी संसार से, तो आप जब जाने लगो तो किसी से कुछ भूल चूक हो गई हो, किसी को अपन कठोर वचन बोल चुके हो, किसी से अपराध किया हो, अनबन हो गई हो, पता नहीं चलता, अपन अपनी पत्नी को ऐसा डांट देते डपट देते हैं जैसे कोई नौकरानी, अपने नौकर को ऐसा डांट देते जैसे कोई कीट पतंग, क्योंकि जीव मान और मद में भूला हुआ जीव को जीव नहीं समझता। अब किसकी ताकत है कि उस नौकर से क्षमा मांगे, और नहीं मांग सकते तो समाधि नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें जीव दिखे तो वो के जीव है, पत्नी नहीं देखो, नौकर नहीं देखो, से आत्मा देखो, जैसे क्या नाम थे जय कुमार सेनापति थे, वो एक इंद्री वृक्ष से, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, वनस्पति से क्षमा मांगते थे सामायिक के टाइम, और उनकी शिकायत भरत चक्रवर्ती से कर दी थी कि आपका सेनापति तो ये हारेगा ऐसे में कैसे लड़ेगा, ये तो पृथ्वी से जल मट्टी से क्षमा मांग रहा, वो क्या लड़ेगा, और वो विजय प्राप्त करती। पेज नंबर है 436। संन्यास के समय को जानकर परिग्रह का त्याग करना चाहिए, किसी का ऋण देना हो ऋण रहित हो जाए, किसी की धन जमीन जायदाद अपने अनीति से ले ली हो वापस देना, संतुष्ट करना, अपराध की क्षमा मांगना, अपनी निंदा ग्रह करना, जो धन परिग्रह शेष रहे उसका बंटवारा करके देकर निराकुल होना, स्त्री का हिस्सा स्त्री को देना, पुत्रों का हिस्सा पुत्रों को देना, पुत्री का हिस्सा पुत्री को देना, दुखी दीन अनाथ विधवा ऐसा कोई आपके आश्रित बहन बुआ बंधु इत्यादि हो तो उसका धन भी देकर समस्त परिग्रह त्याग कर ममता रहित होकर शरीर को समानादि का त्याग करके स्त्री पुत्र गृह आदि समस्त कुटुंब में सैया आसन वस्त्रादि में ममता छोड़ देना। इनका और हमारा कितने समय का संबंध है, जिस देह के संबंध से इनसे संबंध था उस देह को भी अब हम छोड़ रहे हैं, तब देह के संबंधियों से हमारी कैसी ममता रहे। अब हमारे आत्मा का संबंध तो किससे है, अपने स्वभाव रूप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य से। इतने विश्व में सिर्फ इतना है अपना, नीरु है एक आत्म जामे ममत झुकी। हमारा तो निज स्वभाव है, देह चाम हार मांस रुधिर में कृतघ्नि है, जड़ है, ये हमारी नहीं है, हम इसके नहीं है। देह विनाशीक है, हमारा रूप अविनाशी है, हमें तो अज्ञान भाव के कारण इस देह से ममता रही जिसमें अशुभ कर्मों का ही बंध हुआ। अब इस देह के संबंध के नाश की इच्छा करता हूँ, देह के ममत्व से ही अनंत जन्म मरण हुए, संसार में जितने दुखों के प्रकार हैं वे सब मुझे देह के संयोग से ही हुए। राग देश मोह काम क्रोध आदि की उत्पत्ति का कारण ये सब कुछ इस देह का ही संबंध है। इस प्रकार देह से विरागता को प्राप्त होकर दृढ़ता पूर्वक समस्त व्रतों को धारण करे और तैयारी करे इस देह को छोड़ने। बहुत गहरा ममत्व है इस देह से और छूटने में बहुत देर नहीं लगेगी। आत्मा अपना लगे तो देह पराया लगने लगे। अब किस तरह से देह पराया लग सकता है इसकी रचना जाने, इसके साथ रहने से राग के फल जाने, इसको पालने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, एक जरा सी आयु इसके निर्वाह के लिए कितने धंधे कितने खोटे वचन कितने पाप और कितनी हिंसाएं, जरा सा जीवन है और कितना संचय करके चला जाता दूसरी आयु। एक पड़ोसी की अपने स्वामी जी के गांव की बात है उमराला की, वहां एक व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो और पड़ोसी उसे समझाने के लिए आए। तो पड़ोसी समझा रहा था संसार में जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा, शरीर तो नश्वर है मट्टी की रचना है, ना अपने साथ आया है ना अपने साथ जाएगा, आप तो विवेकी हो चतुर हो काय को ममता करते हो विवेक से काम लो, ऐसा बहुत अच्छे से समझा रहा था और वो व्यक्ति भी सुन रहा था। सुनते सुनते और सब आयोजन पूरा हो गया, 2 महीने बाद उसकी पत्नी मर गई जो समझा रहा था। अब वो अब क्या करेगा, अब खुद को समझाएगा, डॉक्टर अपनी दवाई थोड़ी करता है दूसरे। तो उसने वो पड़ोसी आया जिसकी पत्नी मरी थी पहले, वो उसे समझाने आया कि भाई साहब संसार का स्वरूप तो ऐसे ही है, जिसका संयोग है उसका वियोग है, जो आया है वो जाएगा, ये देह ना अपनी थी ना है ना आगे रहेगी, ये तो सब मिट्टी की रचना है, आप तो समझदार हो आप तो चतुर हो, कि ज्यादा चतुर नहीं बनो आप जाओ। हमें समझाने की कोशिश कि आप भी तो हमें ऐसे समझाते थे। अब हमें एक प्रश्न ये है कि यही बात जब वो दूसरे को समझाता था, यही बात है जो पड़ोसी को समझाता था है ना, और उसकी पत्नी मरी थी तो इसे दुख क्यों नहीं होता, और आज से वही मरण हुआ तो दुख क्यों हो रहा बाबू। ये जिनवाणी माता पंसी तब पूछ रही कि पहले भी एक व्यक्ति गया था आज भी एक व्यक्ति गया, जब वो पड़ोसी की पत्नी मरी है ना तो इसे व्यक्ति को दुख नहीं हो रहा था, समय सार सूझ रहा था सिखा रहा था, और आज पत्नी गई सुलभ तो दुख हो रहा, तो आज क्यों दुख हो रहा पहले क्यों नहीं हुआ। क्यों मतलब ये जिनवाणी ये कह रही है कि दुख किसी के मरने का नहीं होता है, दुख ममता का होता है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न ये है कि उसे ये ममता क्यों आई कि ये मेरी पत्नी। पहला प्रश्न तो बहुत सही है कि ये वो पत्नी अपनी नहीं थी, इसलिए अपन को दुख नहीं था। जगत में कितनी हिंसाएं होती हैं, मरण होता, अपन को कहां तकलीफ होती। पर अपने घर का कोई जाता है प्रिय, तो अपन को बहुत कष्ट होता। अब वो ये कह रहे हैं कि ये ममता हुई क्यों है? अपनापन यानी ममता है, तो ये हुई क्यों, बता सकते है? ये कारण समझ में आ जाए तो जीव को ये लगेगी ये तरीका है। बताओ, ये तो सबको समझ में आ गया कि उसकी पत्नी थी, अपन को क्या तकलीफ। अब ये पता चल गया कि ये अपनी है तो दुख होगा। क्यों है विवेक दुख? क्योंकि अपनी मरी, अब अपनी क्यों लगी उसे, अज्ञान का और हाँ, क्यों? ये गुरुदेव सिखाने आए थे अपन कि देखो, इतना तो अपन शास्त्र से पढ़ लेते और सब लोग एक दूसरे को चर्चा कर कि ये अपनी है, अपनत्व है, इसलिए दुख। बाबू जी सही है ना, अपनत्व से दुखी, मोह से दुखी, ममता से दुखी। अब वो कहते हैं ममता होती क्यों है, कौन चाहता है कि जबरदस्ती दुखी हो, ममत्व हो। इसका रहस्य खोला कि तुझे जब तक अपनी चीज अपनी नहीं लगेगी, ये अस्थि परक। वो नास्ति से कह रहे थे कि ये पत्नी अपनी मरी इसलिए दुख है, अपनत्व का दुख। अब वो कह रहे अपनत्व तो आया कैसे इसमें, क्योंकि इस जीव को अपनी चीज में अपनत्व तो नहीं। यहीं से होगा, मैं भ्रमो अपन पो, ऐसा लिखा, अपने पने को भूल आया तब से दूसरे में अपनापन किया। मतलब अपन इतना कह के रुक गए थे कि भैया अपनी पत्नी मेरी है तो अपनापन है इसलिए दुखी है, पर ये कोई अधूरा बात थी। अपनापन क्यों किया? अपने में अपनापन नहीं किया। अपने में अपनापन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो किसी ना किसी उदय से जुड़ा हुआ अपना जीवन संतुष्ट मान रहा, पुण्य के उदय में राजी था, चल रहा है, काम बढ़िया है, सब अनुकूलता है, उसे लगे ही नहीं कि आत्मा जानना चाहिए। जब यहाँ से यात्रा चालू होगी, जब भी जीव दुखी होता है तो अपने घर को भूलता है और पर किसी न किसी से अपनत्व बिठालता है और चतुर्गति की यात्रा करता है। मतलब ये स्तूप देशे बाबू जी आपने पढ़ा हो तो उसमें लिखा कि पूरे जंगल में आग लग गई और एक वृक्ष पर पड़ा, एक वृक्ष पर एक व्यक्ति बैठा है भोला और वो देख रहा है कि देखो वो खरगोश जल गई, देखो वो हाथी की आग लग गई, हाथी में आग लग, बैल मर गया, ये ऐसा चारों तरफ व्यक्तियों को देख रहा। अब ये आग ऐसी बढ़ती बढ़ती बीच में भी आएगी कि नहीं सेंटर? तो वो कहते उस सबकी जलती हुई काया को मरण को तो देखता है, पर अपने ऊपर ही विपत्ति आई उसको विचार में भी नहीं आता कि ये मौत हमारी भी होगी। सबके मरण स्वीकार है, अपने मरण के बारे में कह भी नहीं सकते आप, सोच भी नहीं सकता। एक व्यक्ति आया था जबीरा का, गुरुदेव की आखिरी जीवन था, तो वे कहते ऐसा लगता है कि गुरुदेव अगले साल मिलेंगे नहीं, इतने शिथिल पड़ गए। तो वहां के रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि तुम अपनी तो सोच लो पहले, मैं उनके बारे में सोच रहा, यानी अपने बारे में सोचते ही नहीं जीव कि ये उनके पहले हम जा सकते। कोई भरोसा थोड़ी रहता है कि जवान को ये लकड़ी, छोटी लकड़ी नहीं चलेगी, बड़ी बड़ी जकली, वो तो कोई भी चला जाएगा जिसकी आयु कामता है। ये बैराग जगाने वाले प्रसंग है, झकझोर देने वाले प्रसंग है। हकीकत ये है, ये जीव माने या न माने, ऐसे प्रसंग है कि भरत चक्रवर्ती की आंखों में आंसू आ गए जब पिताजी का निधन, उनका निधन क्या निर्वाण, तो अभी इतना बड़ा छायक सम्यक दृष्टि कि आंख में आंसू आ गए, और वो भरत चक्रवर्ती को समझाने के लिए सो धर्मेंद्र खड़ा हो आदि पुराण। क्या भरत तुम क्यों रोते हो, अच्छा नहीं लगता, आप तो छायक सम्यक दृष्टि, क्या पता है तो ये रोना होना क्या आज, तुम्हें तो इसी भाव में मोक्ष आना पता है भैया, तो फिर आंख में आंसू, कहीं ये राग के आंसू। मेरे पिता थे, मुनि हुए, भगवान हुए, कल तक इस सूर्य के दर्शन होते थे, दिव्य ध्वनि खिरती थी, मुक्ति का मार्ग मिलता था, अब कल से इस भगवंतों के दर्शन 50,00,000,00,000 सागर तक, अब दूसरे तीर्थंकर के दर्शन नहीं। कितना लंबा गया भाई साहब, 50,00,00,000,00,000 सागर, इतना लंबा काल है। चौथा काल जब बीत गया तब अपने अजितनाथ भगवान आए। एक तीर्थंकर का आना कितना कमाल का होता, कितने जीव कर अपना कल्याण करते। तो ये बात समझ में आए, अपना चित्त भींगे। पर तो एक गाथा और पढ़ लेते अपन, 126 नंबर की। शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुस्य मरतिमपि हित्वा सत्त्वावोत्साहे मुरुदीयच मनः प्रसाद्यं श्रुतैरिमृतैः। संन्यास के समय में शोक, भय, विषाद, क्लेश, कलुषता, अरति आदि भावों को छोड़कर कायरपने का भाव करना चाहिए। अपने आत्मसत्व का प्रकाश करके शास्त्र ज्ञान रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न रखना चाहिए। कितनी सावधानी बताई कि संन्यास की वेला में आपके चित्त में मन में शोक नहीं चलना चाहिए। अरे जी हम मर जाएंगे, अब बच्चों का क्या होगा, अब ऐसे ही न जाने कहाँ जाएंगे, ये सब शोक है, आपकी गति बिगाड़ देगा। कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं, कहीं जाते नहीं, जीव तो जीव रहता है। जीव का इतना गहरा श्रद्धान होना चाहिए जिससे उसे डर न लगे कि मेरा भव बिगड़ जाए। नरक में जाना गति बिगड़ना नहीं है बाबू जी, आत्मा की अरुचि गति बिगड़ना है। नरक में तो ज्ञानी जन भी जाते और उन्हें नरक से डर नहीं है पर मिथ्या से बहुत डर। विपरीत रुचि हुई तो इससे कष्ट बहुत। तो कहते शोक ना हो पाए, भय भी इतना ही होना चाहिए कि हमारा कुछ बिगड़ जाए। तो इस तरह से सावधान किया, अनादिकाल से ही इस संसारी की पर्याय में आत्मबुद्धि हो रही है, पर्याय के नाश को ही अपना नाश मान रहा है। देखो एक एक पेन है, इस पेन का उदाहरण देते है ना। अब ये एक पेन है ना बाबू जी, तो एक चीज है कि दो, एक ही लगता है ना, एक ही पेन है ना, परंतु इसके भीतर देखो तो एक चीज अलग है और एक चीज अलग, बाहर से देखो तो एक दिखती है, और थोड़ा सा ज्ञान को गहरा हो तो एक नहीं है दो, रिफिल अलग है और कवर अलग। ऐसे ही एक कवर है, पैकिंग है और भीतर माल, दो चीज हो गई। अब इस जीव पैकिंग को भी अपना मान लो, ये तो फटेगी। रेड लेवल टी जहां लिखा है डायमंड टी, वो तो फटेगा। माल निकालना हो तो उसका तो विदारण करना ही पड़ेगा। बादाम की गिरी निकालना हो तो कवच तो फोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हें भगवान बनना हो तो देह का प्रेम तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि यदि आपने देह में आत्मबुद्धि रखी जो पहले रखते थे, पर्याय के नाश को अपना नाश माना, तो आत्मविराधना के पाप में खराब गति हो जाएगी। जब पर्याय का नाश होना, धन परिग्रह, स्त्री पुत्र, मित्र, बांधव आदि समस्त संयोग का वियोग होता दिखाई देता है, तब मिथ्या दृष्टि को बड़ा शोक उत्पन्न होता है। क्यों होता है कोई बता सकता है? अनुभव बताओ कि जब ये सब छूटता है तो दुख क्यों होता है? मोह तो एक शब्द है, उसकी भाव वासना तो कराओ कि ये सब छूटा है न? तो दुख क्यों होता है? अपनी चीज मानता है। अब वो कहते हैं कि इसे अपना प्राण अपने में नहीं दिखता, चैतन्यता। अब अपना सर्वस्व कहाँ दिखाई देता है? जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ कुछ भी अपना नहीं वहाँ सब कुछ दिखता है, और जहाँ सब कुछ अपना है वहाँ कुछ नहीं दिखता है। प्राण जाने पर बहुत परिणाम बिगड़ेंगे, और पहले से तैयार हूं मैं मरने वाला नहीं, मैं तो चैतन्य हूं। अब हम अमर भये न मरेंगे। एक बनारसी दास, ध्यानत राय, जितने बड़े बड़े ज्ञानी भागचंद जी, इन्होंने भजन लिखे, बोले कि मेरा मरण नहीं होता। तन कारण मिथ्यात दियो तज क्यों कर दे धरे। एक तरफ ऐसा कहते हैं अब हम अमर भये न मरेंगे, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कहाँ गए चक्री जिंजीता भरत खंड सारा, कहाँ गए भी राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मण सती भामा और संपत सगरी, कहाँ गए वे रंग महल और सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अगन लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, वो दयाल उपदेश करें गुरु बारह भाव। एक तरफ कहते हैं कि हम अमर भये न मरेंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं पता है तुम्हें एक दिन मरना है, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, सबको मरना, सबको नहीं मरना, किसे मरना, मान राजा को, राणा को, छत्रपति को, कार वाले को, बाइक वाले को, बंगला वाले को, पैसा वाले को, दस प्राण वाले को, राग वाले, इनको मरना। तुम्हें कहां लगा कि तुम मरोगे, मरना सबको, सबको यानी जीव को नहीं, जो ये है जो अपने को पर्याय से देखते हैं उन सबको दे छोड़ना पड़े। तो देह की अनित्यता बताना हो तो ये गीत गाना, किसी की शादी में पहुंच करके ये गीत नहीं गाना कि राजा राणा छत्रपति हाथ इनके अस्वार, बेटा मरना तुमको बेटा वहां तो ये गीत गाना भैया, धर्म में लगो। ये शादी अनंत बार हुई, जम्बू स्वामी ने शादी कराई थी, देखो चार पत्नियों को भी विरक्त करा लिया, 500 चोर भी बदल गए, वह सब भगवान बन गए। तो ये कहते हैं कि पर्याय बुद्धि जीव की अनादि से रही है, उसके कारण से इसे शोक उत्पन्न होता है, और इस पर्याय में अब ना हो, सब तरह से जो उदय आएंगे शीत उष्ण भय आदि उत्पन्न करने वाले महाकृतक अवश्य सब विनाशीक हैं, आत्मा को समस्त प्रकार का दुख क्लेश आदि उत्पन्न करने वाला है, दुष्ट की संगति की तरह त्यागने योग्य, समस्त दुखों का बीज है, महासंताप उद्वेग को उत्पन्न करने वाला है, सदाकाल भय उत्पन्न करने वाला है, बंदी ग्रह के समान पराधीन करने वाला है, दुखों की जितनी भी जातियां हैं वे सब देह के साथ रहने से खड़ी होती, जितने भी दुख हैं, शरीर में बीपी बढ़ेगी घटेगी, कैंसर होगा, टीबी होगी, जो भी रोग होगा काय में होगा शरीर में होंगे, और शरीर को भिन्न जानो तो कितने रोग रहेंगे। इस तरह से ये बहुत सुंदर चिंतन सदा सुखदास जी के माध्यम से अपन ने पढ़ा, मतलब एक विचार करना कि एक होता है तोता और एक होता है कबूतर, तो तोता को सोने के पिंजरे में भी रखो और काजू किशमिश भी खिलाओ तो भी वो उस पिंजरे से निकलना चाहता, और कबूतर को तुम भगाओ भी हटाओ भी तो भी वो लौट के आता है, वो उस गंदगी में ही रहता। अब अपने में विचार करना कि तुम तोते जैसे हो कि कबूतर जैसे हो, निकलना चाहते हो कि और फंसना चाहते हो, अपने से पूछना कि हम चाहते संसार में और रहना तो एक भाव चाह तो अनंत भाव खड़े होते, हम जब भाव नहीं चाहेंगे तब भाव का सिलसिला खत्म होता। अभी ये समाधि पाठ लगा रहा, एक स्वामी जी का भजन है तो अच्छा है, परंतु अभी अपन को समाधि मन सुनना, इसलिए ग्यारहवें नंबर से चलिए।
जो तुम पूरब पुण्य किए हैं तिन
को फल सुखदाई। तुम्ही त्रविन कौन दिखावे स्वर्ग संपदा भाई। राग द्वेष को छोड़ सयाने सात्य व्यसन दुखदाई। अंत समय में समता धारो प्रभव पंत सहाई। कर्म महादुख भेरी मेरो तासी दुख पावे। पिंजर में बंद कियो मोहि यासों कौन छुड़ावे। भूख त्रसा दुख आदि अनेकन इसे ही तन में गाढ़े। मृत्यु राज अब आए दया कर तन पिंजरे सो काढ़े। नाना वस्त्रा भूषण मैंने इस तन को पहराए। गंध सुगंधित अतर लगाए सट रस यसन कराए। रात दिना में दास हो कर शिव करी तन केरी। सोतन मेरे काम न आयो भूल रहो निधि मेरी। मृत्यु राय को शरण पाय तन नूतन सो पाऊं। जा में सम्यक रतन तीन लही आठों कर में खपाऊं। देखो तन सम और कृतघ्नी नाही सुया जग माही। मृत्यु समय में ये परिजन सब ही है दुखदाई। यह सब मो बढ़ावन हारी जिए को दुर्गति दाता। इनसे ममत निवारो जियला जो चाहो सुख साता। तू कल्प द्रुम पाय सयानी मांगो इच्छा जीती। समता धर कर मृत्यु करो तो पाओ संपत्ति तेती। चौआराधन सहित प्राण तज तो ये पदवी पाओ। हरे प्रति हरे चक्रीति ते स्वर स्वर्ग मुक्ति में जाओ। मृत्यु कल्प द्रुम सम नहीं दाता इनो लोक मझारे। ताको पाए कलेश करो मत जन्म जवाहर आरे। इस तन में क्या राचे जीरा दिन दिन जीरन हो है। तेज कांति वाला नित्य घटते है या समय तेरे सुख पांचों इंद्री शीतल भैया श्वास शुद्ध नहीं आवे तापरवी ममता नहीं छोड़े समता और नहीं लावे मृत्यु राजे उपकारी जिए को तन सौ छोड़ावे ना तरे आतन बंदी ग्रह में परो परो विललावे पुदे गले की परमाणु मिले कर इंड रूप तन भासी याही मूरत में अमूर्ति ज्ञान ज्योति गुण खासी रोग सुख आ देख जो विदन ती सब पुदे गल लारे मैं तो चेतन व्याधि बिना नित है स्वभाव हमारे यातन सो इस क्षेत्र संबंधी कारण आने बनो है खाने पाने दे या को पोष्यो अब समभाव मिथ्या दर्शन आत्मज्ञान बिन भोगे गिने सुख मैंने आपो नाही पिछान्यो तन बिन सनते ना से जानी ये अयाने दुख दाई कुटुंबे आदि को अपनो जान्यो भूले अनादि इच्छा। इस तरह से समता भाव कैसे जीवन में आए, ममत्व कैसे छूटे, परिवार से, शरीर से, संयोगों से, उद्योग से, सबसे वेद विज्ञान निरंतर करते रहना, परिणाम नहीं बिगड़ने देना, कोई अपनी प्रतिकूलता आती है, उपेक्षा होती है, तो अगर सोचना कि तो देखी हमारा क्या बिगड़ता है, आदत बनेगी जब सहनशीलता की, तब इतना बड़ा प्रकरण आएगा तो ये पूरा बगीचा उजड़ना भी यही पड़ा रहेगा और चेतन भगवान अपनी जगह चल रहे
सहजानंदेशोद स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदेशोद स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। अशरीरी सिद्ध दशा ने प्राप्त ऋषभादिति महावीर पर्यंत 24 जिनेन्द्र भगवान 9 चार खाती कर्म नो नाश कर साक्षात समस्या शोभायमान सिमंदर आदित्य अजित वीर पर विश्वरमान जिनेन्द्र भगवान 9 ध्रुव धाम न ध्यान नी धक्ति ध्वनि ने धकावनार अड़ ज्ञान बलना धारक एवं श्री बाहुबली मुनिन्द्र भगवान 9 स्यादवाद रूप अनेकांतमय बे विरोध नहीं अविरतपणे प्रकाशनारी समयसार नियमसार प्रवचनसार आदि समस्त जिनवाणी महातनव प्रमत्त प्रमद समाज झलनारा कलिकाल स्वर्गदेव कंकुण आदि समस्त आचार्य उपाध्याय साधु गुरु भगवान नो पारिणामिक भाव संबंधी बारंगना वचन द्वारा शीणमो गुणस्थान की प्राप्ति नो अमोघ उपदेश दर्शावनार अनंत अनंत उपकारी श्री कहान गुरु देवनो कान गुरु महिमा बतावनार प्रसम मूर्ति भगवती मातनो अपूर्व स्वरणात्म सिद्धिना दाता रेवा कृपाणु देवनो श्री परम पवित्र सनातन दिगंबर जैन धर्मनो निज निधि निज में बताए वह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलो नित्य बोधक जिन वाणी मातनो